मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मुख्य विषय के अंतर्गत फैक्टरिंग बिजनेस, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो सूचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं, और जो दूसरी घटनाएं हैं, समाचार हैं, उन्हें जान लेते हैं। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि कल मैंने आप सबसे यूनेस्को के बारे में कुछ बातें की थी, विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत। उसमें मुझे कुछ मेल प्राप्त हुए हैं, तो उसे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हो गई है, और यही यूनेस्को जो विरासत स्थल का चयन होता है उनका काम करती है। उसने अपना एक तकनीक, एक एक प्रोसीजर डेवलप कर रखा है। जो मैंने 1975 की बात कही थी, हो सकता है कि उसमें कुछ मिसिंग रह गया हो, खासकर जो विरासत स्थलों के चयन की शुरुआत हुई है, इफेक्टिविटी वो 1975 से हुई है। तो प्लीज इसे स्पष्ट कर लें, आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो कि जो यूनेस्को नामक संस्था है उसकी स्थापना 1945 की है, लो जो विश्व विरासत स्थलों के चयन की शुरुआत हुई है वह 1975 से है। दोस्तों, अगर आपने न्यूज सुनी हो, कल रेडियो की न्यूज, तो उसमें एक वाक्य था। मैं वह वाक्य आज जानबूझ करके इंग्लिश में पढ़ करके सुना रहा हूं, हिंदी में मैं बता दूंगा। न्यूज का वाक्य था, सेंटर रिड्यूसेस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मसूर दाल टू 0 टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई। यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने मसूर दाल के आयात शुल्क में कमी करके 0 कर दिया है, मतलब आयात शुल्क उस पर नहीं लगेगा, ताकि हमारी जो घरेलू आपूर्ति है वह तेज हो सके। यह एक वाक्य है, अर्थशास्त्र का वाक्य है, बहुत ही आधारभूत आर्थिक सिद्धांत का वाक्य है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी एक इंपॉर्टेंट वाक्य है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सभी थोड़ा थोड़ा विचार करें। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वाक्य पर थोड़ा थोड़ा विचार करें, समझने की कोशिश करें कि ये इंपोर्ट शुल्क क्या होता है, और फिर और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। चलिए, डोमेस्टिक सप्लाई अगर बढ़ेगी या तेज होगी तो कैसे होगी, और अगर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया है तो उसके और क्या क्या प्रभाव होंगे, इनके बारे में आप सब एक छोटा सा नोट तैयार करें। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क में सोचने की क्षमता पैदा हो सकता है कि कल के मुख्य विषय के तहत इसी पर शायद मैं बात करूं। खैर, उस पर मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इस विषय पर मैं जरूर कभी न कभी बात करूंगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, न्यूज में ही अभी मैं कुछ छोटी छोटी न्यूज आपको बता रहा हूं। न्यूज में ही आपने एक और घटना के बारे में सुनी होगी कि राइजिंग अप प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बना गया, राइजिंग अप प्लेटफॉर्म। तो ये जो राइजिंग अप प्लेटफॉर्म है, ये भारत और बांग्लादेश के जो इनोवेटर्स हैं, जो नए 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 आविष्कार करते हैं और जो उद्यमी हैं, उनको एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करेगा। देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत पड़ोसी राष्ट्रों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस थोड़ी सी आप ये जानकारी भर अपने दिमाग में रखें, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। कल के ही न्यूज़ में आपने एक बात और सुनी होगी कि कल यानी कि 26 जुलाई को वर्ल्ड मैनग्रोव डे था। मैनग्रोव आप जानते हैं, हमारा जो सुंदरवन है वो मैनग्रोव का वन है। बस ये भी आपको मैं संक्षिप्त जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। यूनेस्को ने 2015 से इसकी शुरुआत की है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैनग्रोव धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं, और मैनग्रोव के नष्ट होने का प्रभाव हमारी जैव विविधता पर पड़ेगा, मछली के उत्पादन पर पड़ेगा, तूफान की जो रफ्तार है पृथ्वी स्थल क्षेत्रों में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मैनग्रोव के ट्री हैं वो एक प्रकार से तूफान को रोक करके उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए बाकायदे 2015 से 26 जुलाई को मैनग्रोव डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल मैनग्रोव डे, या कह लीजिए कि वर्ल्ड मैनग्रोव डे के रूप में। एक छोटी सी जानकारी कि जो इंडोनेशिया है उसके पास मैनग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, एक सामान्य सी जानकारी के लिए। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, उनको मणिपुर सरकार ने एएसपी स्पोर्ट्स बना दिया है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट स्पोर्ट्स बना दिया है। हालांकि वो अभी रेलवे में हैं, अब देखते हैं कि मीराबाई से स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। मणिपुर ने बकायदे उनको 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। एक थोड़ी सी जानकारी इस रूप में कि इन सब का उपयोग आप खेल के बारे में अगर कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई उत्तर लिख रहे हैं तो वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करेंट है, बर्निंग है, तुरंत की घटनाएं हैं, तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। न्यूज़ में ही आपने एक बात और सुनी होगी, चूंकि खेल के संबंध में ही हम बातें कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि चूंकि ओलंपिक हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक, तो हो सकता है कि निबंध वगैरह लिखने को आ जाए खेल के बारे में। तो भारत सरकार ने जो खेलो इंडिया योजना शुरू की है उसके तहत यह फैसला किया है कि 236 जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको मान्यता दी जाएगी, 236 प्रशिक्षण संस्थान, ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। यह मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, चूँकि खेलों की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अखबारों में अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों शब्द पढ़ने को मिलेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 और टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2021। देखिए आपको मालूम है कि ये खेल 2020 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हो रहे हैं, तो कब हुए उसमें तो 2021 सही है लेकिन कब होने थे उसमें 2020 सही है, लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के रूप में है। तो यह बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ऐसा न हो कि लिखने में या पढ़ने में या समझने में कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर। कल हमारी संसद ने 2 बिल पारित किए हैं, उनमें से जो एक बिल है उसका नाम है द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। याद रखिए ये जो बिल है ये 2020 है, यानी कि 2020 में ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन किसी वजह से उस समय पारित नहीं हो सका था, तो इसीलिए जो बिल है ये 2020 ही है, क्योंकि कुछ अखबारों में मैंने देखा कि इसके लिए 2021 प्रयोग किया गया है, तो इसको तो हम मुख्य विषय में थोड़ा सा लेंगे। दूसरा जो बिल पारित किया गया है वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता तथा प्रबंधन संस्थान विधेयक, ये 2021 का है। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस बिल 2021, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हरियाणा में है और अब इसे इस संशोधन के जरिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी गई है, और जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाती है तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसको फंड ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, उसका स्टेटस ऊपर हो जाता है, तो इस तरीके से इसे मान्यता दी गई है। अब फ्रेंड्स, मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, वह है द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। लेकिन मैं बिल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं फैक्टरिंग जो बिजनेस है ये क्या है इसके बारे में बातें करने जा रहा हूं। शुरुआत इस तथ्य से करते हैं कि मैंने इसे क्यों चुना। दोस्तों, अगर आप प्री के पेपर उठा करके देखेंगे, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, तो प्री में होता क्या है कि कुछ वोकैबुलरीज दी, शब्दावलियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए फैक्टरिंग बिजनेस क्या है, क्योंकि बाकायदे ये बिल पारित हुआ है और यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगा कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसे थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक बिल पारित हुआ है। तो बस मैं फैक्टरिंग बिजनेस क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप सामान्य तौर पर सिविल सर्विस से जुड़े हुए इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगे तो शायद ही आपको ये देखने को मिले, पढ़ने को मिले, बताया भी नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए बीच बीच में यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि इस बार नहीं पूछा गया तो फिर आगे कभी नहीं पूछा जाएगा, तो इसे आप करंट के तहत लेकर चल सकते हैं। आइए मैं इसे समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेता हूं, ये मैं समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं, बस आप इसकी बेसिक्स को समझ लीजिए, फिर अगर कोई प्रश्न इस पर पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक उद्योगपति हैं, आपने कोई चीज उत्पादन की, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आप अपना सामान मान लीजिए बी को बेच रहे हैं, आप ए हैं और आपने वो सामान बी को बेचा, तो जब आप सामान बी को बेचेंगे तो आप एक बिल बनाएंगे, उसमें दर्शाएंगे कि भाई ये सामान है, इतनी इतनी क्वांटिटी है और इसके ये रेट हैं, और इस तरीके से ये 1 करोड़ रुपए का बिल बन गया, है ना। तो इस बिल को आप कह लीजिए कि आपने इनवाइस तैयार कर दिया और उन्होंने बकायदे उसमें शर्त लिखी हुई है कि ये जो पेमेंट है एक महीने के अंदर जिसने खरीदा है वो दे देगा, वो सब शर्तें लिखी होती हैं। सामान आपने भिजवा दिया, अब आपको शर्त के अनुसार मान लीजिए कि पेमेंट एक महीने में मिलना है, वो एक महीने में पेमेंट आपको एक महीने के अंदर देने के लिए बाध्य है, 1 करोड़ रुपए। लेकिन आपको अभी ही जरूरत पड़ गई रुपयों की, अब आप क्या करेंगे? वो तो कहेगा कि भैया एक महीने की शर्त है, हम एक महीने में दे देंगे, आप उस पर दबाव भी नहीं डाल सकते, इससे तो आपका बिजनेस खराब हो सकता है कि भाई आप अपने ही द्वारा निर्धारित शर्तों को नहीं मान रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, आपको पैसों की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में एक कोई तीसरा संस्थान आएगा, तीसरा व्यक्ति आएगा, तीसरा इंस्टीट्यूशन आएगा, सी। तो सी कहेगा कि अच्छा आपने ये सामान उनको दिया, इसका प्रमाण है, कहिए कि ये बिल है, इनवॉइस है। वो भी कहेगा कि हाँ ये सामान हमने लिया, तो इस इनवॉइस के बदले, जो कि ये प्रमाणित है कि आपने उसको सामान दिया है तो उसका श्योर है, तो ए को वह 1 करोड़ रुपए से कुछ कम दे देगा। वो ये 95% तक दे देते हैं, 1 करोड़ रुपए के बदले में 95 लाख रुपए का भुगतान कर देगा कि लो भाई तुम 95 लाख रुपए दे दो। तो जो उद्योगपति है उसको 95 लाख रुपए मिल गए, उसको कैपिटल मिल गई, कह ले उसका काम शुरू हो गया। तो अब उससे एक महीने तक वो वेट करके उससे वो पैसा ले लेगा, उसको पैसा, अब ये पैसा उद्योगपति को न दे करके जो बी है, जो कस्टमर है, वो इस संस्थान को दे देगा और संस्थान इसके बदले में बकायदे अपना कमीशन लेगी। तो ये जो कमीशन है वही इसका प्रॉफिट होता है। तो इसी को कहते हैं फैक्टरिंग बिजनेस, बस कुल मिलाकर के यही है। अब मैं आपको फैक्टरिंग बिजनेस की परिभाषा बता देता हूं, अंग्रेजी में बता रहा हूं। इसमें केवल आप ये देखिए कि अब जो जिस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, क्या अब आपको यह परिभाषा समझ में आ रही है? और इसी तरह से पढ़ना भी चाहिए, इसी तरह से समझा भी जाना चाहिए। तो देखिए अब मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है फैक्टरिंग बिजनेस की? फैक्टरिंग इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसों का लेन देन हो गया। फैक्टरिंग इज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड टाइप ऑफ डेब्टर फाइनेंस, टाइप ऑफ डेब्टर फाइनेंस, डेब्टर फाइनेंस का मतलब DEBTOR, यानी कि कर्ज जो है, कर्ज को फाइनेंस करना, एक तरह से कर्ज को फाइनेंस करने का प्रकार है। कैसे प्रकार है मैं आपको बता चुका हूं। इन विच अ बिजनेसमैन सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में कर लीजिए इनवॉइस एटसेट्रा, इन विच ये बिजनेसमैन, यहां बिजनेसमैन कौन है, उद्योगपति जो मैंने कहा ए जो है वो बिजनेसमैन, सेल्स बेचता है इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल, जो धन उसे मिलने वाला था उसे वह बेच देता है। क्या बेच रहा है? इनवॉइस, इसीलिए ब्रैकेट में इनवॉइस, टू ए थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कौन है? सी, ये बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, टू ए थर्ड पार्टी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है कि वो पूरा पैसा नहीं देगा, वो अपना तो कमीशन लेगा ना, एट डिस्काउंट। तो इसके जो डेफिनेशन हो रही है दोस्तों वो हो रही है, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड टाइप ऑफ डेब्टर फाइनेंस इन विच ये बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल इन ब्रैकेट इनवॉइस एटसेट्रा टू ए थर्ड पार्टी एट डिस्काउंट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फैक्टरिंग बिजनेस शायद थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार के प्रति न केवल आभार व्यक्त करता हूँ बल्कि एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ कि उन्हें UPSC में अंततः फाइनल सेलेक्शन मिल गया है। दीपक बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।